ओम शांति। योग तपस्या पट्टी के इस प्रातःकालीन सत्र में डॉक्टर सविता बहन हमारे सन्मुख है और हम सभी भाई बहने सविता बहन का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी एक बार हाथ हिलाएंगे, एक हाथ की ताली बजा के सविता बहन का बहुत स्वागत है। आप बाबा के डबल डॉक्टर विशेष आत्मा है। आपने आदरणीय बड़ी दादी जी के अंग संग रहकर एक डॉक्टर के रूप में भी सेवा की है और इस त्याग तपस्या सेवामय जीवन में बहुत उन्नति की है। आप मधुबन में ही विराजते हैं और विशेष जो महिला प्रभाग की सेवाएं हैं उसमें भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में अपना विशेष योगदान देते हैं। सविता बहन आज हमको समझाएंगे स्वराज्य अधिकारी स्थिति, हम कैसे पक्की करें, उसका अभ्यास हमें कैसे पक्का करना है। सविता दीदी जी द्वारा हम अनुभव युक्त ज्ञान रत्न सुनेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। हम सभी राजयोगी हैं। बाबा कई बार कहते हैं बाबा प्रजा योगी हमें नहीं बनाते, राजयोगी बाबा ने सभी को बनाया है। तो राजयोगी अर्थात कर्मेंद्रियों के राजा, कर्मेंद्रियों के अधिकारी। तो सामान्यतः मनुष्य कर्मेंद्रियों के अधिकारी नहीं होते, कर्मेंद्रियों के वश होते हैं, यानी इंद्रियां उन्हें जैसे चलाती हैं वैसे ही उनका जीवन चलता है। जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ऐसे दुनिया में लोगों का जीवन होता है, लेकिन हम ब्राह्मणों का जीवन इससे भिन्न है भिन्न, या हम भी अभी भी वैसे ही करते हैं। अब ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि अब हमारी इंद्रियां बाबा की श्रीमत प्रमाण चलती हैं। तो बाबा ने हर इंद्रिय के प्रति एक श्रीमत दी है और वो जो श्रीमत है उसके अनुसार यदि हमारी इंद्रियां ऑर्डर में हैं तो हम अधिकारी हैं। आंखों के लिए बाबा कहता है कि हमारी आंखें सदा ही आत्मा को देखें, कभी भी देह पर हमारी नजर ना जाए। माना ऐसे नहीं कि देह हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन देखते हुए भी किसको देख रहे हैं, हम आत्मा को देख रहे हैं, यानी हमारी आत्मिक दृष्टि और वृत्ति हो जिस भी आत्मा के हम संपर्क में आए। तो अगर आत्मिक दृष्टि वृत्ति है तो फिर देह का आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जो भी आत्माएं हैं इस दुनिया में और जो भी उनको शरीर मिला है तो हरेक के शरीर में कोई ना कोई विशेषता होती है। किसी की पर्सनालिटी अच्छी होती है, किसी के फीचर्स अच्छे होते हैं, किसी का रंग अच्छा होता है, जो भी। तो अगर हमारी अभी तक भी देह को देखने की आदत है तो उसकी जो भी विशेषता है उससे हम प्रभावित हो जाएंगे, और अगर हम प्रभावित हुए तो फिर कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि वृत्ति चलायमान होगी। ये बाबा मुरलियों में बहुत अंडरलाइन कराते हैं। मैं समझती हूँ हर दूसरे दिन एक मुरली होती है इसके ऊपर। अभी भी कल मुरली थी सिविल आई और क्रिमिनल आई के ऊपर। तो बाबा कहते हैं भाई बहन भी मत देखो, भाई बहन भी देखेंगे तो भी आंखें चंचल हो जाती हैं, आंखें ही सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। भाई भाई की ही दृष्टि रखो, हम आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा हमें देह से इतना ऊपर उठाते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि अगर आपने देह को टच किया तो इस तरह से है जैसे सांप को टच किया, और सांप को काटने, सांप को टच करेंगे तो वो काटेगा, और काटता है तो सांप में विष होता है। तो अगर हम दैहिक दृष्टि में गए, दैहिक आकर्षण में गए, देह के प्रभाव में गए तो उसका विष ना आए, ये हो नहीं सकता है। तो ये बहुत अटेंशन देने की बात है कि मेरी आत्मिक दृष्टि वृत्ति कितनी बनी है, और जितना हम आत्मिक भाव रखते हैं उतना ही हम गुणग्राही भी होते हैं, क्योंकि आत्मा अपने अनादि स्वरूप में गुण स्वरूप है। तो बाबा हमें ये भी कहते हैं गुणग्राही दृष्टि रखो, किसी के अवगुणों पर मेरी नजर नहीं जानी चाहिए। किस पर नजर जानी चाहिए? आत्मा के गुणों पर नजर जानी चाहिए। तो ये शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास मेरा कितना पक्का हुआ है, जितना पक्का हुआ है उतना मेरा आंखों पर अधिकार है। फिर हम दुनिया में रहते हैं, कलयुग की दुनिया में रहते हैं, बाहर के वातावरण में जाते हैं क्योंकि हम सभी काम भी करते हैं, तो हम कई ऐसे दृश्य देखते हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए। लेकिन अगर उन दृश्यों का प्रभाव पड़ता है, माना देखते हुए नहीं देखना है, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए जो हम साक्षी भाव कहते हैं। अब दृश्य नहीं दिखाई देंगे वो तो नहीं हो सकता, हम आंखें बंद कर लेंगे वो भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? साक्षी भाव तो हो सकता है। तो वो भाव तो हम धारण कर सकते हैं कि हमें पता है कलयुग है, तमो प्रधान युग है, ये सब बातें यहाँ इस युग में होनी ही है, लेकिन मुझे इस मुझ आत्मा को इससे न्यारा होना है, मुझे इसके प्रभाव में नहीं आना है। आज हमारे पास घर में टेलीविजन है, या हम कहेंगे मोबाइल है, मोबाइल में ही सारी दुनिया है, टेलीविजन भी आ जाता है आजकल, मोबाइल में सब आ जाता है। तो फिर यदि हम घर में हैं और बच्चे देख रहे हैं या जो भी, बैठे बैठे देख लिया, थोड़ा न्यूज देख लिया, सीरियल चल रहा है सीरियल देख लिया, थोड़ा मनोरंजन करने के हिसाब से या टाइम पास करने के हिसाब से जो भी, तो क्या हम ऐसी चीजें जब देखते हैं बाबा हमें छुट्टी देते हैं? अगर न्यूज भी देखते हैं हम, तो संसार समाचार के भाव से देखा वो अलग बात है, 5-10 मिनट में पता चल जाता है क्या समाचार है, पर अब आधा घंटा एक घंटा बैठ करके न्यूज देख रहे हैं उसका असर मेरे मन पर नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और सीरियल में क्या क्या दिखाते हैं पता नहीं, वो बैठ कर हम देखते हैं तो क्या होने वाला है? तो ऐसे नहीं कि कोई देख रहा है, चल रहा था टीवी, चलो बैठे बैठे मैंने भी देख लिया, नहीं, हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। चलो कई कहते हैं कि हमारे ऊपर नहीं असर होता, ये सब देखते हैं ना ये, इसका कोई असर नहीं होता, देखा बस वहीं खत्म हो गया। चलो खत्म भी हो गया, लेकिन टाइम तो वेस्ट किया हमने, आधा घंटा एक घंटा जो भी देखा हमारा टाइम, हमें सफल करना है तो हम उसकी बजाय सेवा में सफल करें, उसको अपने ज्ञान योग की उन्नति में सफल करें। बाबा ने ये जो साधन दिए हैं हमें लास्ट सो फास्ट जाने के लिए दिए हैं। क्यों ये साधन अभी 5-10 सालों में इतने बढ़ गए? क्योंकि जो बाबा के लास्ट में आने वाले बच्चे हैं उनको भी संपन्न संपूर्ण बनना है, तो बाबा ने हमें सहज साधन दे दिए। जितना हम पुरुषार्थ करना चाहें कोई रोक नहीं है, जब आप क्लासेस सुनना चाहो, जब आप मुरली सुनना चाहो, आप सेंटर जा सकते हो, नहीं जा सकते, आपको सब साधन मिले हुए हैं कि आप लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हो। लेकिन उसकी बजाय, वो क्लासेस सुनने की बजाय, बीच में धीरे धीरे हम, बाबा कहता है कई बार गलियों में भी चले जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए, और अगर चले गए तो फिर चढ़ती कला की बजाय कौन सी कला हो जाएगी? तो ये कंट्रोलिंग पावर हमारी चाहिए कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। नहीं देखना है माना नहीं देखना है, वो कंट्रोल हमारा होना चाहिए। फिर कानों के ऊपर अधिकार बाबा कहता है, तो हमें व्यर्थ पर चिंतन नहीं सुनना है, ज्ञान की बातें सुननी है, ज्ञान रत्नों को धारण करना है। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता कि सारा समय हम ज्ञान ही सुनते हैं, क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, तो एक दूसरे की बातें भी, तेरी मेरी की बातें, ये सब भी सुनने में आ जाती हैं, ना चाहते हुए भी सुनने में आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं सुनना चाहते लेकिन कोई हमारे बड़े हैं वो हमसे बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें नहीं सुनना है लेकिन हम मना नहीं कर सकते, उनको सुनना ही पड़ता है। फिर हम सुनते हुए भी नहीं सुने, यानी वो हमारे मन पर नहीं आना चाहिए। ऐसे कहते भगवान ने दो कान दिए किस लिए, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन कई बार नहीं निकलता है दूसरे कान से, क्योंकि हमारे कान का जो शेप है वो क्वेश्चन मार्क का है, प्रश्न चिन्ह। तो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, अच्छा ये कहा इसने, ऐसा क्यों कहा, इसका क्या भाव था, अच्छा ये ऐसा भी करते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो हम क्या बातों के विस्तार में चले गए। फिर हम जब हम इतना सोच लेंगे फिर हम सुनाए बिना भी नहीं रह सकेंगे, तो जरूर हम किसी दूसरे को वो सुनाएंगे, वो बात फैलेगी वातावरण में और फिर वो सामने वाला भी अपना भाव मिक्स करेगा उसमें। कई बार वो बात इतनी बदल जाती है फैलते फैलते, एक तो बाबा कहता है हम वातावरण को कमजोर करने के निमित्त बनते हैं जब व्यर्थ की बातों को फैलाते हैं, तो वो भी हमारे सूक्ष्म पाप बनते हैं। और फिर जब बात बदलती है और जिसकी बात होती है उस तक पहुंच जाती है, क्योंकि बात घूमती है तो फिर घूम फिर करके उसके पास पहुंचेगी तो उसको बहुत दुख होता है कि हम विश्वास करके किसी को कहा हमने और उसने हमारी बात को इतना फैला दिया। तो इस पर एक कहानी आती है छोटी सी, कि एक बार एक ब्राह्मण थे, उनको दूसरे शहर जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे लिए टिफिन बना देना, हो सकता है रास्ते में देर हो जाएगी। तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो बैठे, खाना लगाया अपना, ऊपर एक पक्षी बैठा था डाली पर और वो पक्षी ने बीट कर दी। तो ब्राह्मण थे तो उनका मन खराब हो गया, बीट पड़ गई, खाना अशुद्ध हो गया, तो उन्होंने शहर जाने का विचार भी छोड़ दिया और घर लौट कर आ गए। पत्नी ने पूछा आप तो शहर गए थे इतना जल्दी कैसे वापस आ गए, तो वो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी का स्वभाव मालूम था कि ये अगर मैंने इसको बताया तो ये पूरे गांव को पता चल जाएगा कि ऐसा हुआ, लेकिन वो पीछे ही पड़ गई तो हार के उन्होंने सुना दिया कि ऐसा हुआ जब मैं खाना खाने बैठा तो पक्षी ने बीट कर दी, इसलिए मेरा मन खराब हो गया मैं वापस आ गया। तो ये बात किसी को कहना नहीं, थोड़ा जोर देके कहा उन्होंने। तो उसने कहा मैं क्यों कहूंगी मैं अपने घर की बात क्यों कहूंगी, सीधी सी बात है। लेकिन उसका स्वभाव था, तो जब स्वभाव होता है तो व्यक्ति को याद ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। तो दूसरे दिन जैसे ही कुएं पे पानी भरने गई, चार औरतें मिली उसको, बातों बातों में उसने सारी बात सुना दी। तो अब जब सब सुनते हैं ना तो सब एक जैसा नहीं सुनते, कोई आधा आधा सुनता है, आधे टाइम उसका ध्यान कहीं और होता है, आधी बात सुनता है। तो एक ने क्या सुना, उसमें से पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, पक्षी की बीट की जगह क्या गिर गया, पक्षी गिर गया। अब उसने फिर चार लोगों से बात की, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। अब उसने चार लोगों से बात की, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो चमत्कार वाली बात हो गई, हमारे गांव में ऐसे पंडित रहते हैं जो मुंह से पक्षी निकाल सकते हैं, तो पंचायत तक पहुंच गई बात। अब पंचायत वालों ने बुलाया कि पंडित जी से चमत्कार देखना चाहिए। जब पहुंचे पंचायत तो पता चला कि मुझे पक्षी निकाल कर दिखाने के लिए बुलाया गया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कहां से ये बात आ गई, किसने कहा ये। फिर दिमाग लगाया तो समझ में आया कि सारा पत्नी की करामात है। फिर बोला पंचायत तक पहुंच ही गए हैं तो फिर कैसे बचना है ये भी सोचना पड़ेगा। फिर उन्होंने उपाय सोच लिया और जब पंचायत में उनको कहा कि अब आप पक्षी निकाल कर दिखाइए, तो उन्होंने कहा मैं दिखा सकता हूं लेकिन जो ये पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। सब चले गए। तो बात क्या थी, कहने का मतलब क्या है, बात क्या थी और जब वो फैली तो क्या हो गई, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं कई बार। इसीलिए कहा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कई बार तो कहते हैं कि देखी हुई बात भी कई बार गलत हो सकती है, तो सुनी हुई बातों पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए जब तक कि हम अपने आप उसको कंफर्म ना कर लें कि ये बात किस हद तक सही है। फिर अगर हम मुख की बात करते हैं तो मुख के लिए बाबा की श्रीमत क्या है, क्या श्रीमत है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। कम बोलो माना बाबा कहता है अंतर्मुखी रहो, अंतर्मुखी जितना रहेंगे उतना हमारा बाबा के साथ योग लगेगा। बाह्य मुक्ता माना मनुष्यों के साथ संबंध में अधिक आना, और जितना हम अधिक बोलते हैं उतना हमारी वाणी की शक्ति खर्च होती है, और इसीलिए मौन का महत्व है। हम आते हैं भट्टी में तो हमें क्या डायरेक्शन मिलता है, मौन रखना है, और ऐसे भी हफ्ते में एक बार मौन रखना चाहिए कहते हैं, या सुबह 4 से 8 बजे तक हमें मौन रखना चाहिए वो भी कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना हम मौन में रहेंगे, केवल मुख का नहीं मन का भी मौन हो, तो हमें बाबा से वो सुख जो अतीन्द्रिय सुख का गायन है वो सुख हम अनुभव कर सकेंगे, और जब हम वो अनुभव करेंगे तब दूसरों को भी हम अनुभवी बनाएंगे। पर कईयों को इतनी बोलने की आदत होती है कि चुप नहीं रह सकते, और अगर जबरदस्ती चुप करा दिया जाए तो लगता है सजा दे दी गई। ऐसे विपसना का एक भाई मुझे अनुभव सुना रहा था। विपसना एक यहाँ पर योग केंद्र चलता है, आबू में नहीं कहीं है, मतलब जहाँ 10 दिन के लिए लोग विपसना योग करने जाते हैं। वो एक प्रकार का योग है जो शारीरिक योग है, यानी सांसों पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर मन को ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। यहाँ तक ये बाबा को तो वो जानते नहीं, तो वहां 10 दिन का स्ट्रिक्ट मौन होता है। जो भी वहां योग करने जाएगा वो मोबाइल भी नहीं रख सकता, उनको मोबाइल भी जमा कराने होते हैं, और किसी से आप कोई बात नहीं कर सकते, इशारे से भी बात नहीं कर सकते, अकेले माना अकेले, मौन माना फुल मौन, बहुत स्ट्रिक्ट होता है वहां पर। तो जब वो मौन रखते हैं, शुरू शुरू में उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि 2 दिन तो कि सचमुच सजा मिल गई, जिंदगी में आज तक कभी किसी इंसान से बात किए बिना हम रहे नहीं, तो और भगवान से भी योग नहीं है, यहाँ तो भगवान से तो योग है, हम शिव बाबा से तो बातें करते हैं ना, वहां तो भगवान का भी परिचय नहीं, भगवान से भी योग नहीं, सिर्फ अपने अंदर जाना है, ऐसा ही योग है सिर्फ। फिर बोला 2 दिन तो बहुत बुरा लगा, ऐसे लगा भाग जाओ यहाँ से, नहीं हो पाएगा हमसे, बहुत कठिन है ये तो। लेकिन फिर 3रे दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा, वो शांति अनुभव होने लगी, एकांत का रस मिलने लगा, मैंने अपने आप जैसे अपने भीतर उतर रहे हैं। और बोला 10वें दिन तो ऐसे लगा कि यहाँ से जाए नहीं, है ना, वो अपने अपना जो अपने में होने का जो सुख होता है वो सुख हमें तब अनुभव हुआ। तो इसीलिए बाबा हमें मौन के लिए अंडरलाइन करते हैं कि बीच बीच में हमें जरूर सब देह सहित देह के सभी संबंधों देह के सभी पदार्थों से बिल्कुल न्यारा होकर के मन को बाबा की याद में स्थिर करना है। फिर बोलते हैं धीरे बोलो। धीरे बोलो माना हमारी आवाज बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रॉयल्टी की निशानी नहीं है, हम सब बाबा के बच्चे रॉयल आत्माएं हैं, पूरे कल्प की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कई लोगों का तो आवाज ही ऐसा होता है कि जैसे वो लड़ रहे हैं, इस तरह से ही बात करते हैं, जोर जोर से बोल करके बात करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये माइक है, इसका आवाज हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मेरा मुख भी तो मेरा माइक है, इसका आवाज हम कम ज्यादा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कई कहते हैं हम गुस्सा नहीं कर रहे, हमारा तो आवाज ही ऐसा है बहन जी, गलत फहमी हो जाती है लोगों को कि हम इन पर गुस्सा कर रहे हैं, पर गुस्सा नहीं कर रहे, वास्तव में बोल ही ऐसा है हमारा। तो अपने बोल को हम ऐसे रखें कि जिससे हम बात कर रहे हैं उतना ही सुनाई दे, बस उससे ज्यादा किसी को भी सुनाई ना देवे। फिर मीठा बोलो। तो मीठा तो हम बोलने लगते हैं ज्ञान में आने के बाद, वाणी में ये अंतर तो आ जाता है, क्योंकि मन में दूसरों के प्रति शुभ भावना होती है, सेवा की भावना होती है, तो हम मीठा बोलते हैं तो लोग भी खुश होते हैं कि देखो कितना मीठा बोलते हैं। कहते भी है ना, ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उसकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी, हमारा गीत है। तो ऐसा अनुभव दूसरों को भी हमसे होने लगता है, फिर भी कभी कभी हमारे बोल कड़वे हो जाते हैं, होते हैं, या सदाई मीठे हैं क्या कहेंगे, जो समझते हैं कभी कभी कड़वे हो जाते हैं। हाँ, वो हाथ उठाए, अच्छा काफी है, 50-50 हैं। तो कब कड़वे हो जाते हैं, जब हम गुस्से में आते हैं, क्योंकि गुस्से में आके ही हम ऐसे बोल बोलते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचता है। तो मेरी बात नहीं मानी, या हमारा अपमान कर दिया, या हमारी कोई निंदा कर दी, या फिर किसी ने झूठ बोल दिया, जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा हमसे नहीं किया, ऐसे ही कुछ कारण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो होना ही है ना, ये सब तो परिस्थितियां पेपर के रूप में हमारे सामने आनी ही है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमने उसे पार कर लिया, हम उसमें पास हो गए। कोई मेरी इंसल्ट करे फिर भी मुझे गुस्सा ना आए, तब हम कहेंगे कि हम उसमें पास हुए। नहीं तो ज्ञान तो पता है हमें क्या करना चाहिए, सबको मालूम है कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर वो परिस्थिति आए तो पास हो जाना है। तो इसका मतलब ये हमें चेकिंग करनी है कि बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, या वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो भी उनसे मीठा ही बोलना है। तो माताएं कहेंगी कि उस समय मीठा बोलो, तो बच्चे तो बिल्कुल उसका फायदा उठाते हैं। क्या कहेंगे, अगर उठाते हैं तो कोई बात नहीं, उनका भाग्य है, वो जो कर्म कर रहे हैं वो उनका बनने वाला है, हमारी तो शुभ भावना है ना, हमने तो बाबा के श्रीमत का पालन किया। ऐसा नहीं कि नहीं समझाना, अगर बच्चे गलत कर रहे हैं तो समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन प्यार से समझा दो, थोड़ा अच्छे शब्दों में समझा दो, समझते हैं तो ठीक, नहीं समझते तो उनका भाग्य साक्षी हो जाओ, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना, हमने उनका ठेका थोड़ी ले रखा। और अगर हम ज्यादा ही सोचते हैं कि ये ऐसे करें, इसका मतलब हमारा मोह है उसमें, तो फिर ये तो हमारी अपनी कमी हो गई कि मोहवश वो आत्मा मुझे अपनी तरफ खींचती है। तो वाणी भी मीठी, और वाणी मनुष्य की पहचान है। इस पर भी एक कहानी आती है कि एक बार राजा, मंत्री और सिपाही, ये तीन शिकार खेलने के लिए निकले। तो जंगल में कई बार अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो भटक गए। अब तीनों ढूंढने लगे एक दूसरे को कि कहाँ होंगे। वहां ही जंगल में एक साधु की कुटिया थी, लेकिन वो अंधा साधु था। सबसे पहले सिपाही पहुंचा वहां, तो देखा उसने, वो समझ गया कि ये अंधा है। तो उसने कहा, अरे अंधे, यहाँ कोई दो लोग आए थे। तो उसने कहा, नहीं यहाँ तो अभी तक कोई नहीं आया। पूछ के जब उसने कह दिया कोई नहीं आया, तो वो आगे निकल गया। फिर थोड़े समय के बाद ढूंढते ढूंढते सिपाही पहुंचा, उसने भी देखा उसको, तो उसने कहा, वो समझ गया कि ये अंधा है साधु। तो उसने उसको पूछा, अंधे बाबा, यहाँ कोई दो लोग आए हैं, मतलब मुझे ढूंढते हुए कोई दो लोग आए? तो उसने कहा, हाँ एक आया था, वो अभी अभी गया है यहाँ से। उसने उसको इशारा किया कि इस तरफ गया है। तो वो मंत्री जो था वो निकला उस रास्ते पर। थोड़े समय के बाद ढूंढते ढूंढते राजा पहुंचा। अब राजा ने भी देखा कि अंधा है, लेकिन उसने बहुत सम्मान से उससे बात की कि महाराज, यहाँ पर कोई दो लोग आए थे मुझे ढूंढते हुए। तो उसने कहा, हाँ महाराज, उसने ऐसे बोला, उसने महात्मन बोला उसको, उसने महाराज बोला। उसने कहा, हाँ महाराज, आपका सिपाही और मंत्री अभी अभी यहाँ से गए हैं और इस रास्ते से गए हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा, तुमने कैसे बोला कि वो मेरा मंत्री था और सिपाही था, तुम तो देख नहीं सकते हो। तो उसने कहा, महाराज, बोली ने उनकी पहचान दे दी, जो सिपाही ने कहा उसने बताया, सिपाही ने ऐसे कहा और मंत्री ने ऐसे कहा और आपने इस तरह से बात की, तो उसे पता चल गया कि कौन क्या है। तो वाणी मनुष्य की पहचान होती है, और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम क्योंकि रॉयल श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए। फिर सोच कर बोलो, कई बार हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, कहते हैं गांधी जी के 3 बंधन हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, पर एक चौथा ऐड किया है, बुरा मत सोचो भी, है ना, बाबा ने उसमें ऐड किया है। तो बुरा मत सोचो माना सोच करके अगर हमें बोलना है तो फिर रिएक्ट नहीं करना है, किसी ने मुझे कहा और बिना सोचे समझे जवाब दिया, फिर बाद में हम पछताते हैं, अरे मेरे मुख से तो ऐसे वचन नहीं निकलने चाहिए, कैसे निकल गए मेरे मुख से ऐसे वचन, ऐसे बोल दिया मैंने, फिर पछताने से क्या होता है, अब तो बोल दिया ना? जो कर्म हो गया उसे तो हम वापस, जिसलिए कहते हैं ना जो बीत गया समय वो वापस नहीं लौट कर आएगा, ऐसे ही जो मुख से निकल गया शब्द वो वापस लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए पहले से ही सोच समझ कर कहो जो भी कहना है। फिर मुख से हम खाते भी हैं, मुख की जो इंद्रिय है वो खाने में भी प्रयोग होती है, जिसका स्वाद से संबंध है तो हम बाहर का खाना तो बंद कर देते हैं ना, तो उस पर तो हमारा नियंत्रण होता है, पर कई बार एकदम पूरा नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमें शादी ब्याह में जाना है या जो भी, अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर हम जाते हैं या कोई ऐसा उत्सव है, फिर हम सोचते हैं कि ठीक है एक आधी बार खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, रोज थोड़ी खाते हैं, बाबा को याद करके खा लेते हैं, बाबा कहता है ऐसे कि दृष्टि देके याद करके खा लो, तो अगर हमने ऐसे खाया तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पूरा अधिकार है हमारा, बाबा कहता है ना मनुष्य आत्माओं को कई बार हम नाराज नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं कि ये हमसे नाराज हो जाएंगे, इनके साथ ही हमें रहना है, इनके साथ ही हमें निभाना है, चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जितना बने उतना कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो चलता है, चलता है थोड़ा बहुत, मनुष्य आत्माओं को कितना निभाया हमने, पूरे 63 जन्म निभाया है, और इस अंतिम जन्म के थोड़ा सा समय हमें पूरा किसको निभाना है, उस लोक लाज को छोड़ करके भगवान को निभाना है, जो हमें अविनाशी प्राप्ति कराने वाला है, हमारी अविनाशी प्रारब्ध बनाने वाला, ये तो गंवाने वाला है, अगर हमने ऐसा किया तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमाई को गंवा रहे हैं। तो खाने पीने के नियम का पूरा पालन करना और फिर साथ साथ मानो भोग बना है या कोई ऐसा ब्राह्मण ब्रह्मा भोजन बना है जो मेरे बहुत मन पसंद है, और मुझे पता है मुझे डायबिटीज है, मुझे मीठा नहीं खाना है, क्योंकि भोग तो मीठा ही होता है ना, जलेबी बनेगी, हलवा बनेगा, गुलाब जामुन बनेंगे या जो भी रसगुल्ला बनेगा, कुछ भी ऐसी चीजें बनती हैं ब्रह्मा भोजन में, या समोसा बनेगा, कचौड़ी बनेगी, अब कोई हार्ट पेशेंट है उसको तला हुआ नहीं खाना, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसे बहुत नमकीन नहीं खाना है, तो कई कई के परहेज होते हैं, मतलब वो परहेज हमें हम करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, वो परहेज नहीं करेंगे तो दवाइयां भी खा के वो बीमारी ठीक नहीं होती, ऐसा हो जाता है दवाइयां भी खा रहे हैं फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या करना है, ऐसे नहीं कि सामने आ गया अभी तो खा लो फिर देख लेंगे बाद में देख लेंगे, ऐसा तो नहीं करते, अगर हम ऐसा करते हैं इसका मतलब, जबकि हमें मालूम है कि इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, पर अगर हम नहीं कर पाते इसका मतलब हमारा अधिकार अभी कर्मेंद्रिय पर नहीं हुआ है। तो ये स्थूल कर्मेंद्रियां और उसके साथ साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, मन बुद्धि और संस्कार, मन बुद्धि संस्कार पर भी हमारा पूरा अधिकार हो, मन हमारी जो विचार करने की शक्ति है उसकी एकाग्रता अच्छी हो, यानी मन को हम जहां जब लगाना चाहें, जिस स्थिति में मन को एकाग्र करना चाहें उस स्थिति में हमारा मन एकाग्र हो जाए, तो हम चेक कर सकते हैं, हम अलग अलग अवस्थाएं योग की अनुभव करते हैं, और अगर मैं चाहती हूं कि अव्यक्त स्थिति में मेरा मन आधा घंटा रहे पूरी तरह से इस देह और इस देह की दुनिया से न्यारा होकर बस पावक की लगन में मैं मगन, आधा घंटा वो मेरी अवस्था होनी चाहिए, फिर मन हिले नहीं वहां से, बाबा के पास जाकर मन बैठा माना बैठा। लेकिन अगर एक मिनट तो हम ऊपर रहते हैं, फिर एक मिनट होते ही कोई बात मुझे नीचे खींच लेती है, अब चाहे वो मतलब दूसरी बात नहीं हो, सेवा की ही बात हो सकता है, लेकिन अगर मन उस एकाग्रता से नीचे आया तो हम कहेंगे मन पर अभी कंट्रोल नहीं है। माना जितना समय जिस स्थिति में मैं मन को स्थित करना चाहूं उतना समय मेरा मन वहीं लगा रहे। कोई बात में बहुत उलझन है मेरे मन में, परिस्थितियां तो आती रहती हैं, छोटी छोटी बातें हमारे मन को उलझा देती हैं कई बार, और उस समय मुझे पता है कि मेरा मन इन विचारों में नहीं जाना चाहिए, बाबा के श्रीमत के अनुसार ये संकल्प मेरे मन में नहीं चलने चाहिए, फुल स्टॉप, बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगा दो, ये स्टॉप करना है मुझे, तो क्या स्टॉप हो जाता है मन? मन पर अधिकार माना, अगर मुझे समझ में आता है कि इस समय बिल्कुल मुझे फुल स्टॉप लगा देना है, और मैंने कहा कि नहीं सोचना है अभी ये, और बिल्कुल मन सोचना बंद कर दे, तब कहेंगे कंट्रोलिंग पावर है, ब्रेक पावरफुल है जिसको बाबा कहता है। तो बाबा कई बार कहता है कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो खास ब्रेक चेक करते हैं कि ब्रेक पावरफुल है, तो जहां ब्रेक लगाते हैं वहीं लग जाता है, और अगर नहीं लगेगा वो ब्रेक, अगर थोड़ा समय के बाद लगेगा तो एक्सीडेंट होने के चांस हो सकते हैं। तो यहां भी हमारे मन का ब्रेक इतना पावरफुल होना चाहिए कि जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। अब उसके लिए क्या पॉइंट्स हम यूज करें जो एकदम ब्रेक लग जाए? तो बाबा ने बहुत दो अच्छे पॉइंट दिए हमको। एक तो हर बात में कल्याण है, जो भी हो रहा है उसमें मेरा कुछ ना कुछ कल्याण है, संगम युग कल्याणकारी, उसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो ज्यादातर व्यर्थ संकल्प बुरी परिस्थितियों में ही चलते हैं, जिसमें मेरा कुछ बुरा हो रहा है, जिसमें कहीं हम असफल हो गए, ऐसी कुछ समस्याएं आ गई हमारे जीवन में, जब नुकसान हो रहा है कुछ, तभी ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं। लेकिन उसमें भी मेरा कल्याण है, मतलब हमारे कोई पुराने हिसाब किताब हैं वो चुकतू हो गए, हमारा वो कर्जा था वो खत्म हो गया। दुनिया में भी किसी का कर्जा खत्म होता है तो खुशी की बात है ना। अब हमें सारे हिसाब किताब यहीं चुकतू करके जाने, अंतिम जन्म है, कर्मातीत बनना है, तो अच्छा है ना, जल्दी जल्दी हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, तो वो ज्ञान तुरंत यूज करके हम फुल स्टॉप लगा पाए। मन बहुत ज्यादा नहीं तो किसी बात की अगर फीलिंग आ गई, कई बार जब फीलिंग में आ जाते हैं, फीलिंग को वैसे बाबा फेल भी कहता है, फीलिंग में आ गए तो फिर एक घंटा नहीं, दो घंटा नहीं, कई बार एक दिन नहीं, कई दिनों तक वो बात मन में चलती रहेगी। जैसे ही फुर्सत में आएंगे उसमें चले जाएंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, या बाबा को याद करने बैठेंगे तो भी वही बात मन में घूमती रहेगी, योग नहीं लगेगा। अब योग नहीं लग रहा तो शक्ति भी नहीं मिल रही बाबा से, फिर उस बात से न्यारा होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार एक राजा था, उसको अपने लिए एक वारिस चाहिए था, तो उसने सोचा कि जिस तरह का वारिस मुझे चाहिए उसके लिए एक शर्त मैं रखता हूँ, जो उस शर्त को पूरा करेगा वो उसको मैं वारिस बनाऊंगा। तो उसके पास एक बकरी थी, तो उसने अनाउंस किया अपने राज्य में कि जो इस बकरी को भरपेट घास खिलाकर लाएगा और राज दरबार में जब इस बकरी को लाया जाएगा तो इसके आगे घास रखी जाएगी, तो वो घास पे मुंह ना मारे, उसे समझा जाएगा कि आपने भरपेट घास खिलाया है, तो जो ये शर्त पूरी करेगा वो मेरा वारिस होगा, है ना, भविष्य में राजा होगा। तो कोशिश की कुछ लोगों ने, तो जब पहला व्यक्ति आया तो लेके गया बकरी को, उसने सारा दिन खूब चराया बकरी को, मतलब पूरा दिन खिलाता रहा वो नॉन स्टॉप, की इतना पेट भरा हुआ हो इसका कि दरबार में जाकर के बिल्कुल भी घास पे मुंह नहीं लगाए। बकरी ने खाया सारा दिन हरी भरी घास मैदान में, और फिर जब शाम का जो टाइम था वो आया दरबार में उसको लेकर के, और दरबार में उसके लिए बहुत कोमल सी बहुत अच्छी हरी घास रखी हुई थी। तो बकरी ने जैसे ही उस घास को देखा दौड़ के गई और फिर खाना शुरू कर दिया। तो शर्त में फेल हो गया, राजा ने उसको हटा दिया। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूं। दूसरे दिन वो लेके गया बकरी को। अब किया उसने भी वही, उसको भी वही समझ में आया, वो भी ऐसे ही फेल हो गया क्योंकि जैसे ही बकरी दरबार में आई फिर उसने घास को मुंह मार दिया। तो राजा ने कहा कि कोई भी मेरी बकरी को भर पेट घास नहीं खिला पाता है। तो एक तीसरा उठा, उसने कहा कि राजन मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है लेकर जाओ। अब उसने क्या किया, बकरी को लेके गया चराने, लेकिन अपने हाथ में एक डंडा रखा। जैसे ही वो चरने जाती उसके मुंह पे जोर से एक डंडा पड़ता। बकरी ने बहुत बार कोशिश की, जितनी बार कोशिश करने जाए उतनी बार एक डंडा पड़ जाए। वो डर गई, घास खाना वाना डंडा खाना। तो थोड़े समय के बाद डंडा देखते ही वो घास में मुंह डालती ही नहीं थी। तो जब उसको पक्का हो गया कि अब ये घास में मुंह नहीं डालेगी, भूखी रही मतलब खाया ही नहीं उसने सारा दिन घास। और फिर जब वो राजा के दरबार में लाई गई तो वो डंडा लेके खड़ा था, बकरी की नजर डंडे पर कि अगर मैंने घास में मुंह डाला तो क्या होने वाला है। डाला ही नहीं उसने, तो उसने शर्त जीत ली और राजा ने उसको वारिस घोषित कर दिया। तो यही हमारे मन का हिसाब है कि जितना आप उसको देते जाओगे, उसकी इच्छा पूरी करते जाओगे, वो कभी नहीं होने वाली, वो उसी तरफ जाता रहेगा, बार बार वहीं जाता रहेगा। लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा, श्रीमत का डंडा देना पड़ेगा, जो बाबा ने हमें पकड़ा रखा है कि श्रीमत माना यही चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। बार बार वो डंडा लगाते रहो अपने मन को, तो फिर हम मन की कंट्रोलिंग पावर यानी मन को कंट्रोल कर सकेंगे। तो बाबा ने ये कहा अंतिम समय में जो परिस्थितियां होंगी वो तो बहुत हिलाने वाली होंगी, अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतिम समय में चारों तरफ से खींचातान करने वाली परिस्थितियां यानी अपने खुद के संस्कार वो भी बाहर आ सकते हैं, दूसरों के संस्कार वो भी हमें परेशान कर सकते हैं, प्रकृति की हलचल वो भी मन को हलचल में ला सकती है, फिर इविल सोल्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ेंगी। तो ऐसी आत्माएं अगर हम कहीं भी कमजोर पड़े तो उन आत्माओं का असर भी आ सकता है। इन सब हलचल की स्थितियों में मन अचल अटल अडोल रहे वो अंतिम पेपर क्या होगा वो भी बाबा ने हमें सुनाया है। उस अंतिम पेपर में क्या स्थिति होनी चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई, सब कुछ होते हुए भी मन टिक जाए एक बाबा में, एकाग्र हो जाए, कोई भी मन को खींच ना सके, वो एक सेकंड का ही पेपर होगा बाबा कहते हैं, और उसी में ही पास विद ऑनर होंगे। अगर हो गए तो पास विद ऑनर, और नहीं तो हमें क्या होना है, पास होना है नहीं होना है, तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं उस समय तो हम कर लेंगे, अभी हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस समय तो हम हो जाएंगे। तो बाबा कहता है उस समय नहीं हो जाएंगे, अभी से बहुत काल से अगर वो अभ्यास होगा तब उस समय हमारी कंट्रोलिंग पावर ऐसी होगी। फिर हमारी बुद्धि पर हमारा अधिकार होना चाहिए, बुद्धि पर अधिकार माना निर्णय शक्ति, सही समय पर सही निर्णय करे, परखने की शक्ति भी हमारी अच्छी हो, माया के रूपों को हम परख सकें, क्योंकि माया अलग अलग रूप लेकर के आती है, रॉयल रूप भी होते हैं माया के, सूक्ष्म रूप भी होते हैं, तो अगर हम परखने में कमजोर हो गए तो वो माया का वार, उसमें हम फेल हो जाएंगे। और अगर हम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाए तो भी हम सफल होने में चूक जाएंगे, पश्चाताप भी करना पड़ सकता है। जैसे कई बातों में हमें सहन कर लेना होता है, लेकिन सहन नहीं करके हमने सामना कर लिया, फिर बाद में समझ में आया अरे यहाँ तो मुझे शांत रहना था, मैंने बोल दिया, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए था। किन्हीं बातों को हमें समाना होता है, लेकिन समाने की बजाय मैंने उसको वर्णन कर दिया, कर जाते हैं कई बार हम ऐसी गलती जब करते हैं इसका मतलब बुद्धि पर हमारा अधिकार अभी नहीं है। फिर संस्कारों पर हमारा अधिकार होने का अर्थ क्या है? संस्कारों पर हमारा अधिकार माना जो मेरे आदि अनादि संस्कार हैं, वो संस्कार कार्य करें, वो संस्कार इमर्ज रूप में रहें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो ये संस्कार मेरे इमर्ज रहे। जिसको बाबा कहता है जो मेरे संस्कार हैं वही बच्चों के संस्कार हों, क्योंकि बाबा भी ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। तो बाबा के समान सदा ही स्नेही, सहयोगी, रहमदिल, दातापन के संस्कार हमारे हों, इसके अलावा कोई संस्कार इमर्ज ना हो। यानी जो अब तक रावण के संस्कार थे, देह अभिमान के संस्कार थे, जो हमारे पुराने संस्कार जिसे हम कहेंगे, वो संस्कार इमर्ज अगर हो जाते हैं, यानी कभी कभी मैंपन आ जाता है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी नाराजगी हो जाती है, मूड ऑफ हो जाता है, हाँ, या कभी कभी वही जैसे कहा अभी कर्मेंद्रियों की चंचलता हो जाती है, अगर बीच बीच में ये पुराने संस्कार भी इमर्ज होते हैं, तो फिर इसका मतलब संस्कारों पर अभी तक हमारा अधिकार नहीं हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे, तो रोज हमें अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगानी है। ब्रह्मा बाबा मन को मंत्री कहते थे कि हे मन मंत्री, आज सारा दिन आत्मा राजा है, तो मन उसका मंत्री, मुख्य मंत्री है। तो मन, मेरा मन, मैं मन के वश रहा या मेरा मन मेरे वश रहा, तो हर एक इंद्रिय को चेक करो, तो हर दिन का अपना चार्ट समझ में आ जाएगा, तो अगले दिन के लिए फिर हम उसको अटेंशन दे सकते हैं। उसे अगर हम चेकिंग करेंगे तो चेंज कर सकते हैं, और अगर हम चेंज करेंगे तो फिर हम चढ़ती कला में जा सकते हैं। बाबा इसको कहता है कई बार, ये आपके लिए ज्ञान का दर्पण है, ज्ञान का दर्पण है। यानी हम कर्मेंद्रियों के कितने अधिकारी हैं, उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे या किसी स्टेट के राज्य अधिकारी बनेंगे या रॉयल फैमिली में आने वाले बनेंगे या प्रजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे, हाँ, या दास दासी बनेंगे। कई बार जानना चाहते हैं ना कि बाबा क्या बनेंगे हम? हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन हमारा पद क्या होगा? तो बाबा कहता है आप अपनी चेकिंग कर लो, कर्मेंद्रियों की चेकिंग कर लो। अगर फुल अधिकार है कर्मेंद्रियों पर, बाबा की श्रीमत अनुसार ही मेरी कर्मेंद्रियां हैं, तो राज्य तख्त नशीन यानी विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, आपको लक्ष्मी नारायण का तख्त मिलेगा। ठीक है, अगर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है, अब वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो आंखें धोखा देती हैं, चाहे मुख धोखा देता है, या कभी कान धोखा दे जाते हैं, कोई एक कर्मेंद्रिय कमजोर है, बाकी सब पर दृढ़ता से अधिकार है, तो फिर रॉयल फैमिली में आने वाले बनेंगे। तख्त नशीन नहीं बनेंगे लेकिन रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी हैं। लेकिन अगर कोई ना कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो फिर प्रजा बनेंगे, कभी कोई कभी कोई, हमेशा अधिकार नहीं है सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर। और साहूकार प्रजा कौन बनती है? बाबा कहता है ज्ञानी बहुत अच्छे हैं, माना जिनके पास ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत अच्छा है, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर जब परिस्थिति आती है तो उस ज्ञान को धारण करके खुद विजयी बन जाएं, वो नहीं कर पाते हैं। जिसको पंडित बाबा कहते हैं ना, कल की मुरली में भी था कि दूसरों को कहा राम राम करके पार हो जाओ तो वो तो पार हो जाते थे, लेकिन जब खुद को पार करने का नंबर आया तो कहा नहीं, मुझे तो नाव चाहिए, मैं नहीं पार कर सकता राम कह के। तो ऐसे मतलब दूसरों को हम सुना देते हैं लेकिन खुद के लिए हम उसे धारण नहीं कर पाते या उस स्वरूप नहीं बन पाते, तो ज्ञान रत्नों का खजाना बहुत है, तो वो साहूकार प्रजा में आ जाएंगे। जो कर्मेंद्रियों के वश उदास हो जाते हैं, कोई ना कोई संस्कार के वश हो गए, फिर परेशान हैं, मुंझते हैं, उदास रहते हैं, खुश मौज में नहीं रह पाते, जल्दी उलझन में आ जाते हैं, वो क्या बनेंगे अपने आप मालूम है। बाबा कहता है जो उदास हो जाते हैं वो दास दासी बनने वाले हैं, और चंडाल कौन बनते हैं, जो ज्ञान छोड़कर बाबा के ज्ञान में आए, आश्चर्य व सुनंती कथंती और भागंती, बाबा की वो संस्कृत की भाषा है। तो फिर ऐसी आत्माएं बाबा कहता है मुरली में कि फिर वो आकर के वहां, तो हम अपनी चेकिंग खुद कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं हम ये नहीं बनना चाहते, मुझे ये बनना है, तो फिर उस अनुसार ही अपना चार्ट रखो और अपनी उस कर्मेंद्रिय को पूरी तरह से बाबा के श्रीमत प्रमाण वो चले, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। और यहां बाबा कहता है कि अपने राजा खुद बनना है, दूसरों के राजा नहीं बनना है। ब्राह्मण परिवार में जब हम आते हैं तो हमें दूसरों पर अधिकार करने की कोशिश नहीं करना है, यहां हम आपस में सभी सेवा साथी हैं, एक दो के सहयोगी हैं, जो अधिकार होगा वो अपने ऊपर है। तो अगर अपने ऊपर पूरा अधिकार है तो दूसरे स्वतः ही हमारे सहयोगी बन जाते हैं, वो प्राप्ति है। लेकिन हम कोशिश करें दूसरों को कंट्रोल करने की या दूसरों पर अधिकार करने की, तो ये संगम युग की नीति नहीं है। बाबा ने हमें क्या सिखाया है, स्व पर राज्य करना, स्व का परिवर्तन करना, दूसरे मेरे कहने से परिवर्तन हो जाए ये भी मुझे नहीं करना है संगम युग पर। तो ये था स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ हम कैसे करें। और ये थोड़ा महीन पुरुषार्थ है, महीन चेकिंग है, और जितना हम करेंगे उतना सहज हम इसमें सफल होते जाएंगे। ओम शांति।
दीदी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताई है, हम सब की तरफ से दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। अब हम 3 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। दरबार अपना सजाएं।